ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्रीवाइड में प्रस्तुत है भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं से नुकसान और राहत बचाव उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में भू मौसम विज्ञान जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
देश भर के कई हिस्सों में भूस्खलन और भारी बारिश से नुकसान की घटनाएं सामने आई हैं। राहत और बचाव कार्य भी जारी हैं। अगर हम विस्तार से बात करें इसके बारे में तो केरल के वायनाड में भूस्खलन से मृतकों की संख्या 260 से अधिक हो गई है और सशस्त्र बलों ने कल खबर आई थी कि 179 लोगों को सुरक्षित निकाला है और राहत और तलाश अभियान अभी जारी है। और इस मामले में जो चूरलमाला क्षेत्र है उसमें बेली ब्रिज का भी पुनर्निर्माण जारी है जो भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और इसी तरह से उत्तराखंड में हम बात करें तो तेज वर्षा के कारण 6 मौतें हुई हैं और भूस्खलन और जलभराव के चलते कई स्थान इससे प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने से भारी नुकसान की खबर आई है जिसमें इमारतें ढहने की खबरें आई हैं और कई लोग अभी इसमें लापता हैं। इसी तरह से दिल्ली और उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है और मौसम विभाग ने दिल्ली में 1 अगस्त से तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र में कोंकण और आसपास के जिलों में भी मूसलाधार बारिश की मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जताई गई है। इन आपदाओं से निपटने के लिए आपातकालीन प्रबंधन योजनाएं क्या होती हैं और इनको बनाना क्यों आवश्यक है और साथ ही इन क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को लागू करना तत्काल प्रभाव से कितना जरूरी होता है, लोगों की जागरूकता कितनी जरूरी होती है, इन सभी विषयों पर आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से प्रोफेसर सूर्य प्रकाश कार्यक्रम में शामिल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
नमस्कार।
सबसे पहले हम प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, वायनाड केरल की ही भूस्खलन की घटना से अगर बात करें तो इस पूरे परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं, इस घटना के कारणों और साथ में इस घटना के लिए जो वर्तमान राहत बचाव कार्य चल रहा है उस पर आपकी टिप्पणी?
देखिए, वायनाड में जो भूस्खलन हुआ है एक बड़ी दुखजनक घटना हुई है। सबसे पहले तो मैं अपनी और अपने संस्थान की तरफ से जो भूस्खलन पीड़ित हैं उनको अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगा आपके जरिए। दूसरी एक ऐसी घटना है जिसके बारे में हमें काफी पूर्वानुमान की जानकारियां मिल जाती हैं
जी,
परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो अचानक बदलाव लाती हैं और जो हमें काफी बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसका स्रोत काफी दूरी पर था और जो इम्पैक्ट है वो दूसरी जगह पे हुआ है। तो बारिश का एक प्रभाव ये है कि ये ऊपरी क्षेत्रों में जब ज्यादा होती है और नालों और नदियों के जरिए एकत्रित होकर काफी मात्रा में जब बहाव आता है तो जो नैरो और लॉन्ग चैनल्स हैं उसमें काफी सेडिमेंट भी उनके साथ आता है। तो ये एक डेब्री फ्लो के फॉर्म में जब नीचे आता है तो इसके रास्ते में जितनी भी संरचनाएं हमारी आती हैं
जी,
चाहे वो भवन हो या कोई सड़क हो या कोई और संसाधन हो, ये सब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और ये घटनाएं अक्सर रात में होती हैं, जो मौसम का है, तापमान कम हो जाता है और मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है हमारे क्लाउड्स की कम होती है, तो एकदम से घनी वर्षा होती है। और ये वर्षा जब घनी मात्रा में होती है तो ये कटाव भी करती है, तो कई तरह के प्रभाव एक साथ मिलकर उसको बड़े दुष्प्रभाव के जो रूप में हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हमारा जो मानवीय दखलंदाजी है प्राकृतिक पर्यावरण के साथ वो भी हमें कहीं ना कहीं हम इसकी ओर धकेलता है कि हमें इस तरह की जो है आपदाग्रस्त परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है
जी।
इसके एक बड़ा कारण है डिफोरेस्टेशन। हमने अपने जो जंगल में बहुत कटाव किया है, माइनिंग है बहुत जगह, हम काफी खदान का काम कर रहे हैं, तो जितने भी हम ढाल हैं उनकी परिस्थितियां बदल रहे हैं और उसमें जो लूज ओपन मटेरियल्स को छोड़ दे रहे हैं
जी,
ये सब कहीं ना कहीं हमारे को प्रभावित करते हैं किसी न किसी समय पर। उसके अलावा जो हमारा घर बनाने का, जहाँ पे हम हैबिटेशन डेवलप करते हैं, उसमें भी हम कभी कभी इन आपदाओं के संबंधित जो जानकारी है वो हासिल नहीं करते हैं और ऐसे स्थलों पर बना देते हैं जो पहले से आपदा ग्रसित रहते हैं। इसी में जैसे एक ऑब्जर्वेशन ये भी आया है कि पहले से पूर्व में भी कुछ वहां पर भूस्खलन हुए थे जो फिर से रीएक्टिवेट हो गए हैं। तो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का आंकलन किया जा सकता है, इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और हमारी नोडल एजेंसी जो है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने काफी मैपिंग भी किया है।
बिल्कुल,
केरला राज्य एक ऐसा राज्य है साउथ क्षेत्र में जहां पर पहले भी काफी ऐसी दुर्घटनाएं भूस्खलन संबंधित हुई हैं और मानसून का ये जो समय है ये सबसे ज्यादा प्रभाव करने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लैंडस्लाइड जो केरला में होते हैं वो वर्षा संबंधित लैंडस्लाइड है जो जल के प्रभाव से होते हैं, जबकि हमारे हिमालयन क्षेत्र में जो भूकंप संबंधित भूस्खलन भी काफी होते हैं।
प्रोफेसर सूर्यप्रकाश, जब भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं तो इसमें राहत और बचाव कार्य को लेकर क्या चुनौतियां होती हैं, कैसे इस पूरे प्रयास को किया जाता है? जैसे अगर हम चूरलमाला के अभी बन रहे बेली ब्रिज का ही उदाहरण लें, क्योंकि ऐसे में बेली ब्रिज बनाए जाते हैं, तो इनके निर्माण का क्या महत्व होता है?
देखिए, भूस्खलन में सबसे बड़ा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में मलबा एक जगह एकत्रित हो जाता है जिसके नीचे हमारे भवन, हमारी संरचनाएं और लोग दब जाते हैं। तो ऐसे में पहला जो चैलेंज, चुनौती हमारे रेस्पोंडर्स को आती है कि ये जो मलबा है वो कितनी मात्रा में है और किस तरह का है। कई बार मलबा ऐसा भी होता है कि जो चिकनी मिट्टी टाइप का होता है जिसमें हमारे पैर भी धंस जाते हैं, गीला होता है पानी की वजह से, भारी वर्षा होने की वजह से, और दूसरा उसमें ऐसा नेचर होता है कि उसमें आसानी से चला नहीं जा सकता, तो उसमें रेस्पोंडर को काफी ध्यान देना पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि आप डेड बॉडीज की रिकवरी में जो हमारा रेस्क्यूअर भी उसकी लाइफ को हम रिस्क कर पाए। इसके साथ साथ जब भी ये भूस्खलन की दुर्घटनाएं होती हैं तो वर्षा भी चलती रहती है, तो बारिश की जो प्रभाव है वो भी उस मटेरियल को रीएक्टिवेट करता है, रीमोबिलाइज करता है और उस पर भी एक बड़ा चैलेंज आता है। तीसरा, कनेक्टिविटी टूट जाती है हमारी, रोड मैंने बताया जैसे सड़क भी टूट गई और आपका जो आप मटेरियल है कहीं पे अगर आपको डिस्पोज करना है या लेके जाना है तो आपको क्विक लॉन्च ब्रिजेस, जिसको हम वैली ब्रिजेस बोलते हैं, वो एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं और उसमें बहुत कम समय में जो है रिवर के अक्रॉस उसको कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो वैली ब्रिजेस एक तरह के हमारे क्विक लॉन्च ब्रिजेस हैं जिसको शॉर्टेस्ट पीरियड में कर सकते हैं और उसके थ्रू हम जितना भी मलबा है अगर एक साइड से दूसरी तरफ को ले जाना है उसको भी ले जाया जा सकता है।
प्रोफेसर सूर्यप्रकाश, पहाड़ी क्षेत्रों में जब भारी बारिश की हम बात करते हैं तो ऐसे में भारी बारिश कई बार आपदा की शक्ल ले लेती है, जैसे उत्तराखंड में तेज वर्षा के कारण विभिन्न घटनाओं में खबर मिल रही है कि 6 लोगों की मृत्यु हो गई और राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन, जल भराव हो रहा है और जो प्रमुख नदियां हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ गया है। इसी तरह से इस स्थिति को देखते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश में, उत्तराखंड में 4 धाम के भी पंजीकरण को निलंबित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी हमने देखा कि बादल फटने की घटना हुई, उससे मंडी और कुल्लू जिले में खासतौर पर इमारतों के ढहने की और लोगों के लापता होने की खबरें हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या चुनौतियां होती हैं तेज बारिश की और किस तरह से ये बारिश नुकसान की शक्ल ले लेती है, इसके बारे में आप हमें बताएं।
मानसून सीजन में 80% जो पानी मिलता है हमें मौसम से, वर्षा से, वो उसी समय में मिलता है। तो जहां हमारे को जल की आवश्यकता है, जल को ही हम जीवन कहते हैं, वहीं ये कारण आकस्मिक मृत्यु का भी बनता है अगर इसका हम सही प्रबंधन नहीं करते हैं। हमारा जितना भी ड्रेनेज लाइन्स हैं, जितने भी हमारी रिवर सिस्टम्स हैं, फ्लड प्लेन्स हैं या वैलीज हैं, उन सब में हमें पानी को रास्ता दे के रखना चाहिए और प्रॉपर रास्ता देना चाहिए ताकि जो जल बहाव है, चाहे वो हमारी ट्रिब्यूटरीज के जरिए आ रहा है, नदी नालों में उफान की वजह से आ रहा है, वो सही तरीके से अपने मेन रिवर सिस्टम में जा सके और प्रॉपर डिस्पोजल उसका हो पाए। तो यहाँ पर जब कुप्रभाव, जैसे आपने उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया, हिमाचल का उदाहरण दिया, ये सब वो क्षेत्र हैं जहां पर हमारे बहुत सारे भवन ऐसी जगहों पे बने हुए हैं, कई जगह जो नदी नालों के आसपास के क्षेत्रों में है जहां से नदियां बह रही हैं और उसके साथ मलबा आता है, जो भवन है उनकी नींव को काट के ले जाता है, तो पूरा का पूरा भवन जो है नदी में चला जाता है। इन क्षेत्रों में जहां पर पर्टिकुलरली हमारे ऐसे डेब्री जोन्स हैं, एल्यूवियल प्लेन्स हैं, वहां पर हमको 2 बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। एक, माउंटेन जोन रेगुलेशंस हमारे यहाँ बने हैं, उनमें ये देखा गया कि पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें हमें किस तरह से भवन या विकास का कार्य करना चाहिए, जो पर्वतीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, हमारे पास फ्लड प्लेन जोनिंग भी की गई है, जहां पे बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाया गया है कि नदी किन किन क्षेत्रों से बहती रही है और या बह सकती है, तो उन क्षेत्रों को हम प्रतिबंधित रखें ताकि प्रकृति का जो भी अपना बहाव है वो या जो भी प्रोसेसेज है वो भी अपने स्वरूप में कंटिन्यू कर पाए और मानवीय एग्जिस्टेंस वो भी अपने साथ रह पाए। तो इकोसिस्टम बेस्ड जो हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड सेफर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो सब इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। सामुदायिक आपदा प्रबंधन को भी मजबूत करना चाहिए, सुदृढ़ीकरण करने की जरूरत है।
मैं महानगरों की स्थिति के बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। दिल्ली में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना को जताया है और आज से ही लेकर ये प्रशासन की तैयारी और सावधानियों की भी समीक्षा इस मामले में हो रही है। जैसे कि दिल्ली के उपराज्यपाल की सलाह है कि मौसम विभाग की चेतावनी के संदर्भ में जो नागरिक हैं वो क्या कदम उठाएं और इस संदर्भ में सभी को सुरक्षित रहने और बारिश में बिना जरूरी काम के बाहर न जाने की भी सलाह इसमें जारी की गई है। स्कूलों को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया गया आज। तो जो महानगर हैं उसमें इस तरह से भारी बारिश को लेकर क्या चुनौतियां रहती हैं, क्योंकि हमने देखा कल भी जलभराव की स्थिति दिल्ली में पैदा हो गई थी।
पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा जो हमारे महानगर हैं वहां पर भी जल प्रबंधन एक बड़ी समस्या रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है उस क्षेत्र में काफी बढ़ जाती है और उसमें जो कैरिंग कैपेसिटी है ड्रेनेजेस की वो रिड्यूस होती रहती है और कंक्रीट कवर बन जाता है, तो सरफेस फ्लो बहुत बढ़ जाता है। इस सब में हमें ध्यान देने की जरूरत है, जो आम जनता जो है कि जो भी क्षेत्र है अगर आप जा रहे हैं, पहले तो जैसा आपने भी कहा और हमारी सरकार भी कर रही है कि हम जो है स्कूल बंद कर देते हैं और कहते हैं कम से कम बाहर जाइए, पर अगर मजबूरी पड़ जाती है और जाते भी हैं तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कई जगह ऐसे हैं जहां पे हमारे मैन होल्स हैं वो खुले रहते हैं, नाले खुले रहते हैं, तो अगर उन क्षेत्रों का जानकारी नहीं है तो आप कोई ना कोई एड लेके चलें, कोई डंडा या कोई स्पोर्ट मटेरियल, ताकि वहां पे आप पहले चेक कर लें कि कहीं आप गड्ढे में तो पैर नहीं जा रहा आपका या कहीं पे आप फिसलने वाले तो नहीं है। तो अगर वहां पे ऐसा है तो उस लोकेशन को आप अवॉइड करके चाहे लंबा रूट ले लें परंतु वहीं पर ना चले हैं। दूसरे जो लो लाइंग एरिया है या बेसमेंट एरियाज हैं उनमें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि पानी बह के उन क्षेत्रों में अगर आ जाता है और इनंडेशन हो जाता है तो उनमें ना रहें और उसको अवॉइड करें और ऊपरी जो मंजिलें हैं उन्हीं में जाएं और उन्हीं में कार्य करें। तो जितनी भी हमारी वाइटल मेडिसिन हैं या कोई फैसिलिटीज हैं या एक्टिविटीज हैं मानसून के दौरान पर्टिकुलरली हमको जो है प्रथम स्थल या द्वितीय स्थल पर ले जानी चाहिए ताकि उनको नुकसान न हो। ऐसा मैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्टिकुलरली कहना चाहूंगा कि या जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पे स्कूल में बच्चे हैं जैसे वो ज्यादा संवेदनशील हैं
जी,
या अस्पतालों में जो हमारे मरीज हैं वो खुद से अपनी केयर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज हमारी नहीं होनी चाहिए जो आप बाढ़ क्षेत्र के अंदर हैं या जहां पानी की इनंडेशन और बारिश के सीजन के दौरान होने की संभावनाएं हैं, तो उनका एप्रोप्रिएट केयर करें और सही तल पर हम उनका फैसिलिटी या उनको सर्विसेज दें।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सूर्यप्रकाश, महत्वपूर्ण आपने समीक्षा की इस विषय की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं से नुकसान और राहत बचाव उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में भू मौसम विज्ञान जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।